जय राधा माधव कुंज बिहाई, जय राधा माधव कुंज बिहाई, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय शोदानन्दन जय जनरञ्जन जय जय शोदानन्दन जय जनरञ्जन जय जय यमुना तीरावनचारी, जय यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत साध श्री वसति गौर भक्तवृन्द, चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत साध श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द, चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत साध श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Radha Vrindavan Chanda Radha Vrindavan Chanda Radhe Jaya Radha Kunda Vihari Radha Kunda Vihari Radhe Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Vallabhadeva Jaya Subhadra Shri Venkatesa Govinda Srinivasa Jaya 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 Gauranita Gauranita Jaya Gauranita Jaya Jaya Prabhupada
ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम पांचवा स्कंद अध्याय क्रमांक एक महाराज प्रियव्रत का चरित्र श्लोक संख्या 28 अन्य सामपि जायायाम यत्र पुत्रः आसन्
उत्तमः तमसरैव इति मनु अंतर अधिपतयः शब्दार्थ अन्याशाम अन्य अपि भी जायायाम स्त्री से त्रया तीन पुत्रा पुत्र आसन थे उत्तम तामस रैवत उत्तम तामस तथा रैवत इति इस प्रकार मन्वंतर मन्वंतर कल्प के अधिपतया शासक अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से तीन पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम उत्तम तामस तथा रैवत थे। बाद में उन्होंने मन्वंतर कल्प का भार संभाला। तात्पर्य ब्रह्मा के एक दिन में 14 मन्वंतर होते हैं। एक मनु का जीवन काल अर्थात एक मन्वंतर की अवधि 71 युग है और प्रत्येक युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। उन मन्वंतर पर शासन करने वाले प्राय समस्त मनु महाराज प्रियव्रत के वंशजी रहे। इनमें से तीन उत्तम तामस तथा रैवत का विशेष उल्लेख हुआ है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजय शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति तापदान्तितं वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं विदं तं सजीवम् साधूतं सावधूतं परिजनाशयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगनारिता श्रीविशाखांश नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पश्चात देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करति वाचालं प्रंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं मंदिर के व्यवस्थापक का और श्रीमंडाधिष्ठान प्रभु के आज्ञा के
और कृपा की भिक्षा करते हुए सारे उपस्थित वैष्णव जो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं, तो हम ये एक महत्वपूर्ण जो विषय भागवतम के हर विषय महत्वपूर्ण होता है, नित्यम भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोक है भक्ति भगवती नैष्टिक है। और लेकिन खास करके जो प्रियव्रत महाराज का चरित्र पांचवा स्कंद, इसका पहला शुरुआत भी श्रीमान सर्वलक्षण प्रभु और दूसरा श्लोक मैंने ही लिया था, लेकिन वहाँ पे केवल प्रत्येक रूप से तीन भक्त बैठे थे, है ना। तो लेकिन आज मंदिर के सारे निवासी बैठे हैं, जैसे कल हमारे श्रीमान माधव सेवा प्रभु के जोरदार उत्साह से प्रेरणा देख, है ना, कि भगवान भगवत भक्ति में केवल दो चीज को देखना चाहिए कि सेवा और कृपा। लेकिन अगर प्रत्येक रूप में देखा जाए तो सेवा और कृपा में कोई अंतर नहीं है। जिसको सेवा मिलता है मतलब कृपा मिलता है, अगर किसी को कृपा मिलता है वो सेवा करने को प्रेरणा मिलता है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, है ना। तो मैं यहाँ पे आपके समक्ष यहाँ पे बैठा हूँ तो ये सबसे बड़ा सेवा और सबसे बड़ा कृपा है। पिछले 20 साल से हमारे जो ये भक्ति का जो प्रवास, तो कहाँ तक कौन सी पथ पे, हम तो भक्ति वेदांत मार्ग पथ पे हैं लेकिन कितने अग्रसर हुए, तो ये हमारे वरिष्ठ या हमारे गुरुवर्ग या हमारे समक्ष जो भक्त बता सकते हैं। लेकिन उनके कृपा के कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये भी आशा करते हैं कि आगे का जो प्रवास वो भी हमारे लिए बहुत आनंद और सुगम होगा। हरे कृष्ण जी। हम कई दिनों से खास करके इस जो कोरोना COVID-19 की भयावह जो ये से प्रभाव से, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा मुझे हुआ क्योंकि पिछले 20 साल से 3 महीना तक मैंने शुरुआत में मैंने 2 साल रुका था जरूर मंदिर की सेवा के लिए, लेकिन जब से मुझे बाहर भेजा गया तब से मैंने इतने लंबे समय तक कभी एक इतने भक्त के साथ रहने का मौका नहीं मिला। और पिछले 20 साल से मैंने जो जो भक्तिमय सेवा कर नहीं पा रहा था मेरा अंदर कमियों के कारण या समय के समय ना होने के कारण, लेकिन मैं थोड़े मात्रा में कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि भगवान के सामने कीर्तन करना हमारे श्रीमान महात्मा प्रिय प्रभु के अथक प्रयास से अभी तक 12 घंटे का कीर्तन चल रहा है, है ना। वो थोड़ी बहुत योगदान हम कर पा रहे हैं, और खास करके भागवतों का, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम मतलब दो चीज़ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, स्वाध्याय और सेवा, है ना। तो हम अब सेवा में इतना व्यस्त थे कि स्वाध्याय करने का सुनते थे जरूर, है ना। तो लेकिन सुनार गौरांग प्रभु जैसे हमारे भक्ति भाई वो शुरू हुआ, पिछले 3 साल पहले भी भक्ति वेदांत विद्यापीठ भी शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ राधेश्याम प्रभु ने अलग अलग श्रेणी रखे थे, जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा, है ना। तो कुछ श्रेणी के भक्त थे जो सुदर्शन श्रेणी में आते थे, है ना। तो लेकिन जब भी मैं मंदिर में रहता था मैं क्लास में तो जरूर बैठता था, सुनता था, उसमें बहुत फायदा होता था। लेकिन जब दूसरा बार शुरू हुआ मेरा मन में ही विचार आया कि शायद इस बार भी करने, लेकिन जो पहला श्रीमान वंशी वर्धन प्रभु के इंट्रोडक्शन हुआ तभी एक क्लास में मैंने था, तो लेकिन दूसरा दिन मेरे को बाहर जाना पड़ा। तो आने के बाद फिर से मेरे मन में इच्छा हुआ कि, तो मैंने जो व्यवस्थापक थे उनको बलभद्र प्रिया कृपा न, तो उनसे मैंने अनुरोध पहले ही किया था कि मैं जब यहाँ रहूँगा तो मुझे कम से कम क्लास सुनने के लिए अनुमति दीजिए। तो मैंने बैठा था फिर नहीं, लेकिन श्रीमान सोनार गौरव ने बहुत प्रेरणा दिए, बोले आपको करना चाहिए। बोले अब क्या फ़र्क है, आप तो बैठ रहे हैं, और आपको एग्ज़ाम लिखना है। बोले एग्ज़ाम लिखना बहुत बड़ा कठिन है बोलते थे, तो बोले नहीं मैं आपको पूरे तरह मदद करूँगा। आप केवल उसको रटिए, आपने तो पहले 20 साल 25 साल तो आपने रटे होंगे ना, तो केवल रट के उसको दीजिए, बहुत फायदा होगा। तो मैंने बहुत प्रयास कर रहा हूँ उनको आज्ञा की पालन करने के लिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ जो महा प्रियव्रत महाराज की जो प्रसंग चल रहा है, तो हम जैसे खास करके हैं हमारा मंदिर में ज़्यादातर ब्रह्मचार्य को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है पुणे मंदिर, मतलब ब्रह्मचार्य के प्रशिक्षण। लेकिन यहाँ पे यहाँ देखते हैं कि जो प्रियव्रत महाराज, जैसे पिछले 20 नंबर श्लोक में बताया गया कि महाभागवत थे, महाभागवत भागवत, तो महाभागवत थे, तो इतने महान भक्त थे, इतना त्यागी वैरागी थे। और नारद मुनि देवर्षि नारद के डायरेक्ट शिष्य थे, तभी नारद मुनि के कितने शिष्य होंगे है ना, इसके बाद ध्रुव महाराज इसके बाद आए ना, तो पहले। लेकिन उनके प्रशिक्षण में रहते हुए भी जब उनको बताया गया, क्योंकि परिस्थिति इस प्रकार था कि ये पूरे जो शासन भार, पृथ्वी का शासन भार को संभालने के लिए तो कोई योग्य व्यक्ति राजा नहीं थे, वो बड़े पुत्र थे लेकिन छोटे भाई, तो उनके उत्तानापाद थे। हमने पूरे उत्तानापाद के वंशावली पढ़े दक्ष प्रजापति तक। चंद्र भगवान की, श्रीदाय गौर चंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। लेकिन तो उनको ही चुना गया कि आप इस भार को संभाल सकते हैं, क्योंकि उनका अंदर योग्यता था, है ना। तो इसलिए ऐसे परिस्थिति हुई कि यहाँ पे नारद मुनि स्वयं उपस्थित है, और उनके मनु महाराज वो भी स्वयं उपस्थित है। मनु महाराज उनको संबोधन कर रहे कि आप ये राज्य का भार संभालिए, क्योंकि मैंने अभी वानप्रस्थ आश्रम की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि कितना साल तक ना। तो लेकिन वो उनके बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, ये स्वाभाविक है, कोई अगर इतनी ऊंची आसन पर स्थित है तो ये घर गृहस्थी या खास करके राज्य का शासन भार में भाग लेना मतलब बड़ा विषम परिस्थिति है, है ना, संसार विषान में। लेकिन इसके वजह से उनको पितामह मतलब ब्रह्मा जी को आना पड़ा, है ना। वो ब्रह्मा जी भी एक महाजन है ना। और लेकिन उन्होंने वहाँ पे जब ब्रह्मा जी के कहने पर और उन्होंने उनको आज्ञा को स्वीकार किए, हाँ जैसे बता रहे थे कि ब्रह्मा जी ऐसे आज्ञा दिए उनको, और केवल आज्ञा नहीं दीजिए, ब्रह्मा जी वहाँ कहे होंगे उन्होंने कि मैं क्यों स्वीकार करूँगा, इतना रिस्क भी लेना ठीक नहीं है, समझा नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको आश्वासन दिए कि मैं आपको आश्वासन देता कि आपका गृहस्थ आश्रम या आपका राज्यवार में किसी प्रकार का तकलीफ मत है, मैं उसको संभाल रहा हूँ, है ना। तो उनके कहने पर प्रियव्रत महाराज तुरंत तैयार हो गए कि राज्य भार संभालने के लिए, और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए। और क्यों कर पाया एक्चुअली, क्योंकि वो महाभागवत डिवोटी थे, भक्त थे, और एक महाभागवत भक्त होने के कारण वो शत प्रतिशत अपने गुरु को आज्ञा पालन करने में समर्थ थे। इसलिए प्रॉपर लिखते हैं कि वन मस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। यहाँ पे उनके तो गुरु तो नारद मुनि थे, है ना, तो नारद मुनि की तो ही इच्छा था कि एक्चुअली इस प्रकार से वैराग्य का जीवन आप बिताइए, फिर से क्यों आना है, क्योंकि जैसे जो वर्णाश्रम धर्म में ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ फिर संन्यास आश्रम का तो अपना नहीं है अंतिम में, तो फिर से हमने फिर वापस क्यों आके फिर से क्यों जाना है अपने। लेकिन अभी गुरु का आज्ञा है, गुरु का आज्ञा नहीं लेकिन गुरु के गुरु के गुरु के आज्ञा है। और ब्रह्मा जी बोले कि मैं बता रहा हूं क्योंकि ये भगवान का आज्ञा है इसलिए आपको पालन करना चाहिए। तो उन्होंने कोई दिव्यता से कोई हिचकिचाते हुए उन्होंने उसको अपनाया। इसलिए मुकुंदमाला स्तोत्र में एक सुंदर जो श्लोक है, मत जन्मान फलमिदं मधुकैट भारे मत प्रार्थनिया मत अनुग्रह एसवह तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यश्च भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। तो इस श्लोक में कुलशेख महाराज कितने बार, 7 बार भृत्य शब्द का आप्रय कर रहे, जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णना आता है कि हमारा भी वही इच्छा होना चाहिए एक्चुअली कि मैं एक भक्त का भक्त का भक्त का सेवा करूं। गोपी भरते पर देखो मतलब दास 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 अनदास। तो सरसुदास गोस्वामी महाराज उसके लिखते वहां पे, टू कंसिडर वन सेल्फ इफ ए सर्वेंट ऑफ ऑल वैष्णव एंड टू पुट देयर फुट डस्ट ऑन वन्स हेड इज नॉट डिमिनिंग, इट इज द बेस्ट वे टू प्लीज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्णा। प्रहलाद महाराज टोल्ड हिज फादर दैट अनलेस वन हम्बली सर्व्स द वैष्णव एंड वेज इन द डस्ट ऑफ देयर लोटस फीट वन कैन नेवर अटेंड डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। तो ऐसा नहीं कि जैसे हम किसी श्लोक का रचना करते हैं तो सुनने के लिए भी अच्छा लगना चाहिए ना, तो इसके वजह से उन्होंने 7 बार वृत्य 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 का शब्द का प्रयोग किए नहीं। इसलिए वहां पे भी ससुरदास गोस्वामी में लगते कि क्यों एक भक्त का भक्त का भक्त का सेवा क्यों करना चाहिए, हम भगवान के प्रत्यक्ष रूप से मैंने डायरेक्ट सेवा क्यों नहीं करती, भक्त का सेवा क्यों करना चाहिए। तो पहला ये बताते हैं कि ये सबसे सुगम है कि हम किसी भक्त भगवान का सेवा करके बदले से एक भक्त के अधीन में अगर करते भक्त का सेवा करते हैं तो ये सबसे सुगम है ना। प्रभुपाद भी कहते हैं कि लव मी लव माई डॉग, क्यों हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और भगवान को पहचान हमारा कहाँ है कि भगवान स्वयं बताते हैं कि हम भक्तों पर अधीन, मैं स्वतंत्र हूँ लेकिन मैं भी भक्त का अधीन में हूँ। अगर हम डायरेक्ट भक्त के संग रहेंगे भगवान के संग सेवा करने का प्रयास करेंगे, एक तो भगवान को सेवा की कोई कमी नहीं है, सेवक की कोई नहीं है, सहस्र सहस्र लक्ष्मी सुनती, तो हमारा सेवा क्यों। लेकिन किसी भक्त के माध्यम से अगर हम सेवा कर पाएंगे ये सबसे बड़ा सुगम है। जैसे हम कांचीपुर में जो भरतराज स्वामी उनके जो सेवक महान सेवक थे का नाम कांचीपूर्ण था, तो भगवान के वो डायरेक्ट सेवा कर रहे थे भगवान की, मतलब ऐसा नहीं कि पुणे जैसे 6 महीना ठंडा 6 महीना गर्मी है ना, लेकिन वहाँ पे तो साल 365 दिन क्या होता है गर्मी होता है। और भगवान का भगवान के सामने क्या कर रहे थे, पंखा है कि नहीं, चामर थे। हम तो जो भक्त लोग बाहर आते हैं या भगवान का एसी चला जाते लगता है कूलर लगता है और हम लोग आराम करते हैं ना, लेकिन वहाँ पे किसी ना किसी को सेवा करना पड़ता था बाहर रह के। जो भगवान का पट बंद होता था तो वो बाहर रह के एक्चुअली क्या रस्सी में उसको हिलाना पड़ता था कहते थे, तो उनको सेवा मिला था तो अपने आपको बहुत धन्य मानते थे और इतने
महान वैष्णव थे, भक्त थे, भगवान के साथ प्रत्यक्ष रूप से बातें करते थे। तो कई बार अनेक वैष्णव लोग, भक्त लोग प्रश्न पूछते थे उनके बारे में। तो ऐसे एक भक्त उनको प्रश्न पूछा कि आप पूछिए थरा भरद्र स्वामी को कि मैं कब वापस आ सकता हूँ भगवान के धाम में। तो उन्हें जाके पूछे तो भगवान भरद्वाज ने बोले कि इस जब ये शरीर छोड़ेंगे तभी वो मेरे धाम आ सकेंगे, आए। तो वाकई उनको बताए भगवान के भक्त, तो वो तो कभी भगवान के भक्त जान भगवान के धाम जाने नहीं चाहते, कि भगवान उनको जैसे भी स्थिति में रखेंगे तो ऐसे स्थिति में रहना चाहते थे। तो उनके मन में कई दिन के बाद उनके मन में वही प्रश्न हुआ है ना। तो उनके तो 100% गारंटी था, तो मैं तो अभी भी सेवा कर रहा हूँ और शरीर छोड़ने के बाद मुझे इसमें कोई फियर नहीं है, है ना, ना कोई शंका नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान भरद्वाज को उन्होंने पूछा, जो भगवान को उन्होंने पूछा तो भगवान बोले कि आप नहीं आ सकते। तो उनको लगा शायद भगवान मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि आपने मेरा सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरा सेवा मांग रहे हैं, इसलिए मैं आपको सेवा दे रहा हूं, है ना। तो कोई अगर भगवान का सेवा मांगेंगे तो भगवान को सेवा जरूर देंगे, लेकिन आपने आपको कभी नहीं देंगे, है ना। तो देखा जाए तो कई सारे भगवान का भक्त, कई सारे जो लोग जो है भगवान का भक्त प्रत्येक सेवा कर रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि भगवान को भक्ति कर रहे या भगवान को प्रसन्न कर रहे, इसे कोई लेना देना नहीं है भगवान को, है ना। तो उन्होंने बोले कि क्योंकि जब तक आपने किसी भक्त का सेवा नहीं किए तब तक आपने देते। तो उसी समय उन्होंने बिल्कुल सोचे नहीं है कि मंदिर का व्यवस्था आपको बताया नहीं कि मैं ये सेवा छोड़ रहा हूँ, है ना, आप दूसरा आदमी देख लीजिए, है ना, मुझे भी जाना है। वो तुरंत उसी समय निकल गए और कहा जाता है कि गोष्ठीपूर्ण के जाके वो आपने वेश बदल के, लेकिन तो इतने बड़े भक्त को कौन सेवा देगा, छोटी छोटी मोटा सेवा, हाँ वो आपने वेश बदल के जहाँ पे वहाँ पे सेवा की है, हाँ। लेकिन कुछ दिन साथ एक साल सेवा करते करते एक्चुअली एक दिन वो पकड़ में आ गए, है ना। तो जो पकड़ में आ गए तो फिर गोष्ठीपूर्ण ने बोले कि अरे आप ऐसे मैं आपको भी नहीं रख सकता हूँ। हाँ तो एक तो उन्होंने भगवान के अधिकृत मतलब भगवान जो मंदिर के व्यवस्था को उनको भी बताया नहीं था कि मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ फिर वापस आऊँगा, या मुझे मिलते बिना अनुमति से चले गए थे, और यहाँ भगवान से नाराज भी है भरद्वाज स्वामी से। तो उन्होंने बोले कि अभी कैसे मैं जाऊँगा मुँह दिखाऊँगा। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है अभी मैं रंगनाथन का सेवा करूँगा। तो रंगनाथन तो समुद्र के किनारे वहाँ पर थोड़ा ठंडी होता है, तो वहाँ तो पंखा का सेवा नहीं कर सकते, और भगवान तो उन्हें लगा कि मैं जाके वहाँ का भगवान का पाद प्रक्षालन करूँगा। तो भगवान बोले आपको देखता नहीं अभी लक्ष्मी जी बैठे हैं ना, तो आपका सेवा मुझे नहीं चाहिए ना। तो वहाँ से भी निकल गए अभी क्या करेंगे, तो सोचे कि ठीक है अभी जाके तिरुपति बालाजी, है ना, वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी, तो उनका सेवा करूँगा। तो वहाँ पर जाके पहुँच गए और वहाँ पहुँच गए, वहाँ पे जाके उनको पंखा करने लगे। तो बालाजी बोले कि यहाँ इतना ठंडी है ना, तो आप मेरे को आपका सेवा मेरे को नहीं चाहिए, है ना। तो फिर वो फिर वापस आए भगवान भरद्वाज के पास आए भरद्वाज स्वामी, और उनको फिर से वही सेवा में लग गया एक्चुअली जो पहले से पंखा का सेवा कर रहे थे। तो इस प्रकार से फिर दूसरा कारण बताया जाए कि आप भगवान का डायरेक्ट सेवा करना चाहते हैं लेकिन भगवान आपका सेवा ग्रहण नहीं करना चाहते, है ना। हम सेवा करना चाहते हैं लेकिन भगवान आपका सेवा ग्रहण नहीं करते, जैसे ये आदि पुराण में बताया गया, ये मैं भक्ताज जन पार्थ न मे भक्तश्च जन मग्ध भक्तात् च भक्तश्च तमे भक्ततमः मतः। तो यमुना माता जी भी अपने एक साक्षात्कार में बता रहे थे कि प्रभुपाद जी को इतना प्रिय थे और प्रभुपाद जी को भोजन बनाते थे। हम भारतीय लोग देखते हैं, है ना, तो हम कितना चाहे सीखने के लिए प्रयास करते लेकिन प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत और एक्सपर्ट जो दक्ष थे तो उनको प्रश्न करना वजन मतलब बहुत कठिन हो गए थे। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी उसे प्रश्न देते। तो प्रभुपाद जी एक बार उनको बताया कि मतलब हलवा बना के लाइए, तो उन्होंने हलवा बनाया, लेकिन उन्होंने वो जैसे रावा का मोस्टली सूजी का हलवा बनाते गेहूँ का, तो उन्होंने दूसरा कुछ ग्रेन्स था उसके उन्होंने बनाया, तो लाइक प्रभुपाद जी पसंद करेंगे वैरायटी, नो अच्छी वैरायटी तो बन थी। तो उन्होंने बहुत ध्यान लगा के उसको प्रस्तुत किए, भगवान को भोग लगाया और आके प्रभुपाद के सामने अर्पण किए। तो प्रभुपाद जी को पता चला एक्चुअली कि ये तो रेगुलर नहीं है, मतलब रवा नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोले कि नहीं लूँगा मैं, तो इतना नाराज हो कि बोले अभी अभी प्रभुपाद जी के डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, अभी किसको जाके बताएंगे। तो ये भी एक ये है कि हम अगर डायरेक्ट भगवान का सेवा कर रहे हैं तो अगर भगवान और हमारे बीच में कुछ ऐसे ये होता है तो किसको जाके बताए, अरे भगवान ने आपको रिजेक्ट कर दिए, बराबर भगवान आप नाराज है तो किसका सेवा करेंगे, है ना। एक नहीं तो बड़ा ये हो गया, अभी क्या करेंगे। तो नहीं तो भगवान के सामने आए, आके एक्चुअली अभी प्रभुपाद के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत ठाकुर, तो उनको बड़ा दयनीय होकर ये नम्र से बहुत प्रार्थना किए, बड़ी तीव्रता से प्रार्थना किए। 10 मिनट के बाद फिर प्रभुपाद ने तुरंत उनको बुलाया, तो उन्होंने उनको लगा कि और कुछ डांट पड़ेगा। तो प्रभुपाद बोले लेके आओ उसको, तो फिर से उनको थोड़े दिए मिलते नहीं, तो प्रभुपाद जी खाने लगे, बोले और लेके आओ, तो प्रभुपाद जी उसको पूरा ख़त्म कर दिए। तो उन्हें बोलने लगे कि ना, तो उसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि गुरु के गुरु मतलब जैसे हम अभी प्रभुपाद जी के पोते हैं, है ना, तो प्रभुपाद जी के पोते होने के कारण एक्चुअली हमारे ऊपर ज़्यादा कृपा है, क्योंकि यमुना देवी अभी भक्ति सिद्धांत खड़ा के पोती थी। तो वो महसूस की एक्चुअली कि हम गुरु को जितना गुरु के जितना कृपा प्राप्त नहीं कर सकें, लेकिन गुरु के मतलब पूरे और आगे अगर जाएंगे पूरे आचार्य वर्ग वहाँ तक ब्रह्मा जी और भगवान कृष्ण तक, तो उनके इतने कृपा हमारे ऊपर मिलेगा, लेकिन गुरु के माध्यम से ही प्रतिनिधि के माध्यम से हम जा सकते हैं। और तीसरा कारण उन्हें बताते हैं कि भक्त कभी क्योंकि नम्रता जो छह शरणागति का भाव बता गया था उसमें पहला जो आता है शरणागति नम्रता, तो भक्त नम्रता के कारण वो कभी भगवान के सीधा सेवा डायरेक्ट सेवा करना नहीं चाहेगा, भगवान के प्रतिनिधि का ही सेवा करना चाहेगा। नहीं तो ये नम्रता का कारण, जैसे हम नारद मुनि के थे, नारद मुनि को प्रत्यक्ष रूप से भगवान का दर्शन हुआ लेकिन भगवान अंतर्ध्यान हो गए और नारद मुनि और प्रार्थना कर रहे थे कि नहीं बार बार, तो वहाँ पे भगवान उनको बता रहे कि क्योंकि आप में क्योंकि परिपक्व आपके जो भक्ति भी परिपक्व नहीं हुआ, सेवा परिपक्व नहीं हुआ, है ना, आपका सेवा पूरा नहीं हुआ और आपके अंदर कुछ कलमश अभी भी है, इसलिए मैं आपको अभी दर्शन इस जन्म में मैं आपको दोबारा दर्शन नहीं दे सकता हूँ। नारद मुनि तो अगर भगवान का दर्शन हो रहा है तो फिर इसका मतलब नारद मुनि का अंदर कुछ कलमश था, नहीं था, लेकिन एक भक्त का नम्रता के कारण नारद मुनि इसको दिखाना चाहते कि भगवान के प्रति हमारा जो तीव्रता और कैसे बढ़े। अगर हम बोलेंगे भगवान का दर्शन मिल गया, भगवान का सेवा मुझे मिल गया, तो हमारा अंदर वो तीव्रता नहीं होगा, खत्म हो गया, है ना। तो इस कारण ये हमारा हम हमेशा चाहेंगे कि भगवान का भक्त का सेवा करना चाहिए। और फिर जैसे 22 नंबर श्लोक में ये बता गया कि ये प्रियव्रत महाराज को ही क्यों चुना गया, क्योंकि ये प्रियव्रत महाराज मतलब एक खंड मतलब एक पृथ्वी का या एक छोटे मोटे प्रदेश का राज्य का भार संभालने के लिए नहीं बनाया गया, है ना, अखिल धारा मंडल एंटायर यूनिवर्स, इतने बड़े जो है ना। तो जिन लोग ने मंदिर का व्यवस्थापक है उनको पता होगा कि मंदिर चलाने के लिए कितना ये जरूरत होता है या कितने तकलीफ सहन करना पड़ता है, ठीक है नहीं। तो उनको इतने बड़ा राज्य का भार संभालना पड़ेगा इसलिए उनको चुना गया और उसके लिए समक्ष थे। और फिर साथ साथ उस श्लोक में बताया गया कि जो इतना अगर कोई इस कार्य में मतलब ये जो पृथ्वी का जो संसार का एक्चुअली जो भारी संबंध है वो संसार के बारे में बताया कि अति विषम विष विष जलाशय स्मृति, मतलब क्या है ये जो भौतिक जगत क्या है विष से भरा हुआ है, एक्चुअली विष से भरा हुआ है, चाहे हम कितना भी प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ मात्रा में क्या होगा हमारे अंदर क्या होगा, थोड़ी ना तो कोई कलमस आ ही जाएगा एक्चुअली कहीं कारण इतनी ना, हम नहीं चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए कितना शुद्ध होते हुए भी तो बहुत ही सावधान से इसको संभालना पड़ता है। तो इसलिए उनको ये कार्यभार संभाला गया, तो उन्होंने तुरंत राजी हुए, तैयार हुए। और कैसे क्यों राजी हुए एक्चुअली, ऐसा नहीं कि हमको कोई अगर एक तो हमको सेवा मिलता नहीं, अगर सेवा मिल गया तो हमको ये समझना चाहिए कि कृपा है इस सेवा के लिए, शायद मेरा अंदर योग्यता है नहीं है लेकिन मुझे दिया गया, मतलब उसको मेरे को अच्छे से संभालना चाहिए। अगर बोला जाता है कि ये सेवा छोड़ के आप दूसरे सेवा करो, उसके लिए भी तैयार होना चाहिए, इसके प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने को जब सेवा दिया गया तो उन्होंने किस तरफ से उसको संभाले, वो हमेशा भगवान के चरण कमल, कल जैसे बता रहे थे भगवान के चरण कमल से क्या निकलता है मकरंद, है ना। और जिस मकरंद को कोई अगर आस्वादन करना चाहता है अगर किया है, उस भगवान का चरण कमल को छोड़ के बाकी जो संसार के जो, है ना, देखते ना कई सारे मोह मिलता है वहां पे लिखा होता है प्योर हनी, और चित्र में भी वो मधुमक्खी का जो ये वो भी दिया जाता है ना, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता है, है ना। हाल ही 3-4 साल पहले उड़ीसा में भी एक महान माना जाता है कि बड़े महान भक्त थे और उनके कई सारे जो अनुयायी थे, है ना, और उनको पुलिस ने उनको पकड़ा चली किसी गलत कार्य से, और फिर वो जेल में उनको डाला गया। अभी उनको खैर 2-3 महीना पहले छोड़े एक्चुअली, बहुत नाम था उनका। तो पूरा उड़ीसा में घर घर में लोग, बड़े से लोग के आईएएस ऑफिसर से लेके उद्योगपति से लोग के रिक्शा वाला तक एक्चुअली क्या करते थे, उनका ही नाम गुणगान करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में गए और जगन्नाथ मंदिर तुलसी हम देखते हैं कहाँ, केवल भगवान को अर्पण करते है कि नहीं। तो लेकिन उन्होंने तुलसी मौनी को भी निंदा कर दिया स्मृति ने, और जब निंदा की उसी के 1 महीना के अंदर ये घटना बीती और उसने पकड़ में आए ना, है ना, जेल का दंड भोगना पड़ा। तो बाद में पता चला कि जब लोग उनको मिलने के लिए जाते थे तो आपने यहाँ से ना वो यहाँ से ऑपरेशन करके उन्होंने एक ट्यूब में मधु को डाल के रखे थे, और जब लोग आके उनके चरण स्पर्श करते थे तो उसको दबाते थे और बूंद बूंद मधु निकलता था। है ना, तो हमको देखना चाहिए कि मतलब भगवान के जो सही आश्रित है, जो शुद्ध भक्त है गुरु शिष्य के परंपरा माध्यम से, है ना, तो हर कलयुग पे प्रभाव से एक्चुअली हर कोई व्यक्ति उसको नकल करना चाहता है ना। तो लेकिन उनने क्या कहते थे कि उनके जो मन जो है पूरी पूरी भगवान के चरण कमल से तल्लीन था, और वो शब्द आता है परिरंधिता, परिरंधिता कषाया, पूरे तरफ से एक्चुअली उनके अंदर किसी प्रकार का कलमश नहीं था, बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त थे। इसलिए उनको ये चुना गया कि ये बाहर संभालने के लिए। तो इसके ऊपर कई सारे भक्त लोग अलग अलग जो टीका क्लास में बता रहे थे, तो इस भक्त है जो पूरी तरफ से इंद्रिय तृप्ति से परे है एक्चुअली, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई भी आश्रम में क्यों ना रहे तो उनके लिए कोई इंद्रिय तृप्ति उनको कभी बाधक नहीं बन सकता है भगवान का भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और फिर बताया जाता है कि मानवर्धन, भगवान के शुद्ध भक्त को जैसे उनके ब्रह्मा जी और मनु महाराज के आज्ञा को उनको मान देने के लिए, उनका मान को सम्मान करने के लिए उन्होंने आज्ञा का पालन किए। और जैसे वे एक उत्तम अधिकारी ये थे, तो उन्होंने उत्तम अधिकारी पद को त्याग करके मध्यम अधिकारी का पद को स्वीकारे, दो तरीके से मध्यम अधिकारी बन सकते, कोई कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी बन सकता है, कोई उत्तम अधिकार से मध्यम अधिकारी को स्वीकार करता है। तो अभी भी देख सकते कि एक्चुअली हम भी प्रोपाज बोलते कि एक जो भक्त है, जो प्रचारक है, कम से कम उसको मध्यम अधिकारी के स्तर पे आना चाहिए है ना। तो लेकिन हमारा स्तर और प्रभुपाद जी के स्तर बिल्कुल फर्क है। लभे मात्र साधु संग सर्व सिद्ध है, कोई प्रभुपाद जी के लभे मात्र अगर कोई प्रभुपाद जी के संग करता है, वो भी प्रभुपाद जी को भूल नहीं सकता आत्मतति। तो ये एक उत्तम अधिकारी, तो इसलिए उत्तम अधिकारी पद से उन्होंने मध्यम अधिकारी पद को स्वीकार किया, ये उनको मान वर्धन करने के लिए, उनके वचन को पालन करने के लिए। जैसे कल के श्लोक में भी हमने देखे थे, उनकी जो पहले पत्नी है उनके से 10 पुत्र हुए और एक कन्या है, लेकिन पहले 3 जो पुत्र हुए कवि, महावीर और श्रवण, तो उन्होंने क्या परमहंस पद को प्राप्त किए। तो परमहंस पद मतलब तो जो अपने मन और इंद्रिय को पूरी तरह से नियंत्रण करते, भगवान के 24 घंटा भगवान के सेवा में लगे हुए, उपशम शिलाह, कंप्लीटली कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ देयर सेंसेस। तो ये 3 पुत्र हुए। और आज के श्लोक में बताया कि उनके जो दूसरी पत्नी है, तो पूरे मैंने भागवत में सर्च किया, उनके दूसरी पत्नी का नाम नहीं है, है ना। जैसे 2 दिन पहले हमारे वृंदा के हमें मेरा शंपू प्रश्न पूछ रहे थे, जैसे कि माता सुनीति के बारे में, क्योंकि सुनीति इतने बड़े महान भक्त है जो ध्रुव महाराज को भगवत धाम पहुंचाने में समक्ष रहे, तो कितने बड़े, तो उनके बारे में कहीं चर्चा भी किए, तो इतना ज़्यादा चर्चा नहीं हुई ना। तो इसलिए प्रोपा जी शंपू जी बता रहे थे कि जो हमारा आचार्य दिए है, जो शास्त्र में दिया है, बस इतने है, हमारा इस मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे शास्त्र में कहीं दिया होगा तो। लेकिन उन पर यहाँ पे जो दूसरे पत्नी का नाम नहीं बताया होगा, और उनसे जो 3 पुत्र हुए, इनका नाम हुआ उत्तमा और तमस और रैवत, वो भी इतने महान बने आगे जाके, एक्चुअली वो पूरे विश्व का कार्यभार संभाले मनु है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी पांचवा पहला स्कंद का 5वां अध्याय में जो नारद मुनि अपने साक्षात्कार बताते हैं अपने शिष्यों व्यासदेव जी को, वो भगवान के महान भक्त कैसे बन गए। तो इसमें प्रभुपाद जी वो सुंदर बताते हैं कि गृहस्थ क्या कर्तव्य क्या होना चाहिए, अपने संतान को पहले तो वो गुरुकुल में दाखिल करना चाहिए बचपन से, है ना। और दूसरा प्रभुपाद लिखते हैं कि माता पिता का जो कर्तव्य ये होता है कि उनको ये जो पारिवारिक या जो सांसारिक ये से उसको बचाने के लिए, मतलब मुक्त रखने के लिए। और तीसरा बताते हैं कि इनके वही एक्चुअली उनके पारिवारिक जो पारिवारिक जो ये फैमिली प्लानिंग इज टू बिगेट चिल्ड्रेन फॉर कंप्लीट परफेक्शन। ऐसा देखते हैं कि कैसे सारे जो गृहस्थ है उनकी कोई संतान है ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जैसे भक्ति सिंह ठाकुर ने को बताया गया कि आप तो इतने परमहंस है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, तो आप तो, और आपके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर में बताया गया ना, जे दिन गृहते भजन देखी गोलोक भाय, है ना, गारंटी के साथ बोल सकते कि मैं शुद्ध हूँ, है ना। तो उनको पुत्र वो भी इतने महान थे, है ना, लेकिन उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किए। और उन्होंने बताया कि मैं प्रवेश कर सकता हूँ अगर मैं गारंटी दूंगा कि, और मैं इतने सारे संतान को उत्पन्न कर सकता हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो भगवान के शुद्ध भक्त बनेंगे। लेकिन एक माता पिता का कर्तव्य यही रहता है कि अपने संतान को, अपने बच्चे को यही संस्कार दे ताकि वो आगे जाके भगवान का महान भक्त बने। तो इसलिए इसमें तापतर में प्रोपाज लिखते, विदाउट बींग सेल्फ कंट्रोल, विदाउट बींग डिसिप्लिन एंड विदाउट बींग फुली ओबीडियंट, नो वन कैन बिकम सक्सेसफुल इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, एंड विदाउट डूइंग सो नो वन इज एबल टू गो बैक टू गॉड हेड। है ना, गोल्डन पर्पोटेशनल प्रोपा जी के, है ना। तो ये जो मनु के बारे में बताया कि हम जब स्वयं मनु है, तो एक मनु जो स्वयं मनु, फिर षोड़शीत मनु, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा, उत्तम, तमश और रैवत मनु, फिर चक्षुष मनु आया, चक्षुष मनु के बाद फिर सूर्यदेव के जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ वैवस्वत मनु, हाँ उनका दूसरा एक और नाम है श्रद्धादेव मनु, जिस मनु के काल में हम लोग हैं। और ये जितने भी मनु हैं उनके एक जो मनमंत्र अवतार के बारे में बताया गया, तो उनका नाम भी बताया गया, यज्ञ थे पहले मनमंत्र अवतार स्वयं मनु के शासन काल में, फिर दूसरे जो है विभु, फिर सत्यसेना, हरि, वैकुंठा, अजीता, और वैवस्वत मनु में कौन है मनमंत्र अवतार अभी, बामन देव, और एक एक इंद्र भी रहता है और सप्तऋषि भी रहते हैं, ये पूरा जो इतना बड़ा ये को संभालने के लिए। तो अगले मनमंत्र में बलि महाराज जो अभी सुतल लोक में वास कर रहे वो बनेंगे मनु, और अभी के इंद्र कौन है, पुरंदर। हाँ तो देखिए कितना व्यवस्थापक, कितना ये है, आगे कौन बनने वाले हैं, आगे ये पूरे बिल्कुल ये है। तो इसलिए हमको शास्त्र के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि शास्त्र जो बता है उस शास्त्र के नियम के अनुसार अगर हम उसको पालन करते हैं तो हम भी उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें हमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराश्रीमद् भागवतम की, ग्रंथराश जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की।
वेलकम जगन्नाथ, वेरी क्विकली वेलकम। हाउ मेनी मोर डेज? कदाचित् कालिन्दे तट विपिन संगीतकरवो मुदाभिरे नारे वदन कमलास्वादन मधु जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवतु मे भुजे
सब लोग साथ में गएंगे ना?
ओके
प्रभु जी पहले गाएंगे, इसके बाद हम रिपीट करें।
अभी कदाचित गाइए सब लोग। निशार्थित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवतु भुजे सव्ये पुयेणं शिरसि शिखि पिच्चं कटितटे दुकुलं ने
नेत्रान्ते स सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्भोधेस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवाव शरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावार सजल जल दश्रेणी रुचिरो रामावाणी राम सुरद मल पंके रुहमुखः सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रतारूढो गच्छन् पतिमिलित भूदेव पटलैः स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मा पीडः कुवल यदलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दी राधा सरस वपुरा लिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै याचे राज्यं न च कनक माणिक्य विभवम् नयाचे हम रम्याम सकल जन काम्याम वरवधो सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरां यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति श्री जगन्नाथ स्वामी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की शिला प्रभुपाद की श्री श्री गौर निताई की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्रा की गौर प्रेमानंदे